दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें मैंने और मेरी सहेलियों ने गोवा जाने का प्लान बनाया। ट्रेन से जाना था, लेकिन किसी कारण से मेरी ट्रेन छूट गई और मैं जब स्टेशन पर पहुँची तो पता चला कि अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा बाका नौजवान मुझे दिखा और मुझे लगा कि शायद इसकी भी ट्रेन छूट गई है। मैं समझ गई। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो मैंने रोते रोते कहा, मेरी ट्रेन छूट गई है, क्या आपकी भी? उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, अब तो मुझे घर लौटना पड़ेगा। वो लड़का बोला, घर क्यों लौटना पड़ेगा? मैं टैक्सी बुक करा रहा हूँ, सुबह तक गोवा पहुँच जाऊँगा, अपने दोस्तों से मिल लूँगा। मैं बोली, काश मैं भी टैक्सी में जा पाती। वो बोला, आप मेरे साथ चलो ना, कोई परेशानी नहीं है। हमने टैक्सी बुक की। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शबनम है और उस लड़के का नाम शेखर था। शेखर और मैं आपस में बातें करते हुए गोवा की तरफ जा रहे थे। तभी शेखर बोला, शबनम तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, नहीं। तो वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी खूबसूरत हो। मैंने कहा, मैं लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी और इसी साल कॉलेज में आई हूँ, अभी समय ही नहीं मिला। फिर मैंने पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत कोई मिली ही नहीं। मुझे शर्म आ गई। कुछ ही देर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और शेखर का हाथ मेरे हाथ को छूने लगा। रात का समय था, टैक्सी में जा रहे थे, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में मेरा हाथ शेखर के हाथ में था। शेखर ने पूछा, तुम मुझे पसंद हो? मैंने कहा, थैंक यू। उसने कहा, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने कहा, हाँ, मुझे भी तुम अच्छे लगे। धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते किस तक आ गई। थोड़ी ही देर में मुझे महसूस हुआ कि शेखर का जादू मेरे ऊपर धीरे धीरे चलने लगा था। उसके हाथ अब मेरे हाथों से निकलकर मेरी गर्दन तक आ पहुँचे थे और धीरे धीरे वो मेरे सीनों तक आ गया। वो मेरे बूब्स को पकड़कर धीरे धीरे दबाने लगा और मेरे होठों को अपने होठों के ऊपर रखकर चूमने लगा। हम चुपचाप एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और एक दूसरे को हाथों से स्पर्श कर रहे थे। धीरे धीरे शेखर मेरी सलवार निकालने लगा और मेरी जूत में उंगली देने लगा। अचानक मेरा शरीर अकड़ने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे जिस्म में एक अचानक सी लहरें चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। और फिर मैंने शेखर के लंड के ऊपर अपना हाथ रख दिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। कुछ ही देर में शेखर का शरीर भी अकड़ने लगा और तभी उसके लंड से पिचकारियां निकलने लगी। सामने वाली सीट पर उसका वीर्य उछलकर फैल गया। हम दोनों ने खिड़की के बाहर देखा तो काफी अंधेरा था। अभी हमारी आंख लगी ही थी कि अचानक से हमारी नींद खुल गई। हमने देखा कि टैक्सी एक पत्थर से टकरा गई थी। ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर देखा तो कहा, लगता है सर पाइप फट गया, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। हम लोग परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, घबराइए नहीं, पीछे 1 किलोमीटर पर गांव में एक मैकेनिक की दुकान है, मैं बस 20-25 मिनट में उसको लेकर आता हूँ। ड्राइवर चला गया तो शेखर और मैं जंगल में घूमने लगे। चांदनी रात थी, चारों तरफ अंधेरा, कोई भी नहीं, और मैं और शेखर खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के सीने से लग गए। मैंने आव देखा न ताव, शेखर को चूमने लगी और शेखर ने फटाफट मेरी कुर्ती उतार दी। हम दोनों शर्टलेस हो गए। धीरे धीरे उसने मेरी ब्रा का हुक खोला और मेरे बूब्स को कैद से जैसे आज़ाद कर दिया। मेरी महकती जवानी को देखकर शेखर पागल हो उठा और मुझ पर टूट पड़ा। धीरे धीरे जंगल के अंदर हम दोनों एक दूसरे को नंगे होकर चूम रहे थे और मेरे मुंह से आह आह की सिसकारियां निकल रही थी। फिर मैं घुटनों पर बैठ गई और शेखर का मोटा लंड मैंने मुंह में ले लिया। मैं उसके लंड को चूस रही थी एकदम आइसक्रीम की तरह। शेखर भी बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। धीरे धीरे चूसते चूसते मेरी चूत में एक अजीब सी सिहरन हो गई। मैंने कहा, शेखर इसको शांत करो। यह सुनकर शेखर ने टैक्सी में से एक मोटा कंबल निकाला और जंगल के अंदर घास पर बिछा दिया और मैं लेट गई और शेखर फटाफट मेरे ऊपर आया और सपाट से अपना लंड मेरी चूत में घुसा दिया। मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ और मेरे आंसू निकलने लगे। शेखर ने फटाफट मेरे होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए ताकि मेरी आवाज़ ना निकले। धीरे धीरे मेरा दर्द कुछ कम हुआ और अब मैं भी मज़े लेकर अपनी गांड को उछाल उछाल कर शेखर से चूमने लगी। शेखर ने मेरे दोनों सतनों को पकड़ा हुआ था और उन्हें ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए उत्तेजना में मुझे चूम रहा था और चारों तरफ मेरी सिसकारियों की गूंज उस खुले जंगल में गूंज रही थी। हम दोनों एक दूसरे के अंदर खोए हुए थे। मेरी चूत को अपने वीर्य से भरने के बाद शेखर मेरे ऊपर ही लेट गया। मुझे इतना सुख मिल रहा था और मैं दुआ मांग रही थी कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। हम कुछ देर लेटे रहे। अचानक हमें याद आया कि ड्राइवर कभी भी आता होगा। तभी फटाफट हमने कपड़े पहने और टैक्सी में जाकर बैठ गए। तब तक ड्राइवर हेल्पर को लेकर आ गया और मैकेनिक को भी। मैकेनिक अब्दुल गाड़ी चेक करके बोला, नया रेडिएटर पाइप डालना पड़ेगा, उसे लाने में अभी टाइम मिलेगा। ड्राइवर शेखर से बोला, हम लोग बहुत दूर से पैदल आए हैं सर और बुरी तरह थक गए हैं, आप ही चले जाओ इस बार पाइप लाने। शेखर मुझे छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हम पूरी रात जंगल में भी तो नहीं रुक सकते थे। तो शेखर चला गया तो ड्राइवर मेरे पास आकर बोला, मैडम आपके चिल्लाने की आवाज़ें मुझे वहाँ तक सुनाई दे रही थी, लगता है साहब ने बहुत जम के रगड़ाई की है। मैं गुस्से में बोली, अपनी औकात में रहो, तुम ड्राइवर हो। ड्राइवर भी ताव में आ गया और बोला, साली टंडी जंगल में अजनबी के साथ मंगल करती है और इधर ताव दिखा रही है। मैं समझ चुकी थी कि अब इनसे चूद कर मज़ा लेने में ही भलाई है, वैसे भी शेखर अभी बहुत देर तक लौटेगा, तब तक इनके साथ क्यों नहीं। ड्राइवर ने मुझे चुप देखकर सोचा कि ये रेडी हो गई है और फटाफट मेरा मुंह पकड़कर मेरे होठों को चुम्मा दे दिया और उसकी सांसें मेरी सांसों में समाने लगी। फटाफट ड्राइवर ने मेरी सलवार को खींचा और मुझे नंगा कर दिया। इस बीच मुझे घास पर पटक दिया, मेरे ऊपर आ गया और लेट गया। धीरे धीरे वो मुझ पर हावी होने लगा और मैं फिर से एक बार मदहोश होने लगी। मेरे बदन में गर्मी आने लगी। ये नज़ारा देखकर मैकेनिक अब्दुल हंसते हुए बोला, भाईजान ये रंडी तो मूड में आ गई है। ड्राइवर बोला, मेरा लोड़ा ही इतना ज़बरदस्त है, किसको जन्नत दिखा दूंगा। मुझे मज़े लेते हुए देखकर अब्दुल और छोटू भी आ गए। उन्हें भी लगा कि अब हमारा चांस है। फिर साथ में अब्दुल और छोटू आकर मुझे चूदने में मदमस्त हो गए और मैं जैसे अपने होश गंवा बैठी। अब फटाफट ड्राइवर, मैकेनिक और हेल्पर तीनों ही लोग मुझे चूदे जा रहे थे। कोई मेरे मुंह में अपना लन डालता, कोई हाथों से सहलाने को कहता, कोई चूत में डालता। अब मैं अकेली तन्हा तीन लोगों के साथ जुदाई के मज़े ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में घूम रही हूँ। थोड़ी देर बाद हम तीनों चूद कर जब थक गए तो कपड़े पहन कर आए। ड्राइवर, मैकेनिक और हेल्पर वो काम पर लग गए और मैं टैक्सी में ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं।